समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तन्वी। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार करिश्मा, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द लिसनर्स। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड फॉर यू, लाइक करिश्मा ऑलरेडी मेंशन्ड, वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, ऑल दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। सो लेट्स बिगिन आवर प्रोग्राम विद द न्यूज हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi takes part in Silver Jubilee celebrations of Uttarakhand's Formation Day in Dehradun, launches several development projects worth over 8,000 crore rupees.
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त होगा.
President Draupadi Murmu holds bilateral talks with her Angolan counterpart in Luanda.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने कहा, संगठन समाज में विभाजन समाप्त करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम शुरू करने के सामाजिक सद्भाव के लिए कार्य करेगा।
गुजरात एटीएस अरेस्ट्स 3 सस्पेक्टेड टेररिस्ट एसोसिएटेड विद आईसिस फ्रॉम गांधीनगर।
और भारतीय वायुसेना ने अपनी 93 वर्षगांठ के अवसर पर आज गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर भव्य हवाई प्रदर्शन किया।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we will talk about National Legal Services Day. Imagine this, you've got something important to say, something that affects your life or a dispute that's been dragging on, but you feel like you can't speak up because you don't know how or you don't think you can afford it. That's where Assess steps up.
और इसकी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि न्याय सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होता है जो महंगे वकीलों का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। भारतीय कानून यह सुनिश्चित करता है कि अमीर गरीब सभी को कानूनी मदद पाने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत सरकार को उन लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करानी चाहिए जो इसका खर्च नहीं उठा सकते।
Every year, November 9th is celebrated across India to spread awareness about legal rights and to ensure that justice reaches everyone, especially those who need it the most.
हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत सभी के लिए न्याय पर प्रकाश डालता है क्योंकि इसी दिन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लागू हुआ था। इसका उद्देश्य उन लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है जिन्हें अन्यथा सुनवाई नहीं मिल पाती है।
एंड ऑन दिस डे लीगल अवेयरनेस कैंप्स आर हेल्ड बाय स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज अक्रॉस द कंट्रीज रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ free legal aid and other services provided by the legal services authorities. Apart from the legal services authorities, fast track and other special courts help expedite court cases, while legal awareness programs, training initiatives and the use of modern technology makes justice more accessible and affordable.
श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा सभी के लिए न्याय तक पहुंच के आदर्श वाक्य के साथ काम करता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में पारित हुआ और 1995 में लागू हुआ था। तब से मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है।
एंड इट्स नॉट जस्ट वर्ड्स, इन द लास्ट 3 इयर्स अलोन मोर देन 44.22 लाख पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम फ्री लीगल एडवाइस एंड सर्विसेज, दैट टू विदाउट हैविंग टू पे अ सिंगल पेनी। And think about that. Tens of millions of voices were heard. Tens of millions of disputes were settled. Many before they even became full-blown court cases. All through a nationwide system built to tie law and justice to each individual regardless of social or their financial barrier.
बिल्कुल और श्रोताओं राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कैलेंडर में दर्ज सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि यह एक साहसिक चेतावनी है कि कानून सिर्फ न्यायाधीशों के लिए नहीं है ये हम सब के लिए है न्याय हर नागरिक का है चाहे उसके साधन पृष्ठभूमि या बाधाएं कुछ भी हों
The most wonderful part is that free legal aid is available for people who cannot afford legal services, such as women, children, senior citizens, and those from economically weaker sections of society. Exactly. Through Lok Adalats and legal awareness camps, people are given guidance and access to justice in a simple, affordable, and also timely manner. Free legal aid plays a vital role in helping society grow by ensuring that justice is accessible to everyone, regardless of their financial condition. It empowers the poor, marginalized, and vulnerable sections of the society to stand up for their rights and seek fair treatment under the law. By removing economic barriers to justice, free legal aid promotes equality, reduces exploitation, and builds trust in the legal system.
बिल्कुल और ये जो लोक अदालत हैं इन जैसे तंत्रों के माध्यम से विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में भी मदद करता है जिससे नागरिकों और अदालतों दोनों के समय और संसाधनों की बचत होती है जब लोगों को यह विश्वास हो जाता है कि कानून उनकी समान रूप से रक्षा करता है तो समाज अधिक न्यायपूर्ण स्थिर और सहयोगी बनता है
एब्सोल्युटली एंड विद दिस बैकड्रॉप लेट्स वॉक इनटू द हार्ट ऑफ व्हाट दिस डे रियली मींस इट्स ओरिजिन इट्स रीच एंड इट्स रोल इन टर्निंग द प्रॉमिस ऑफ जस्टिस फॉर ऑल इनटू एवरीडे रियलिटी लेट्स सी हाउ दिस जॉइंट मशीनरी ऑफ लीगल एक्सेस वर्क्स हाउ इट रीचेस इनटू विलेजेस एंड टाउनशिप्स How technology, awareness camps and outreach are shrinking the gap between rights and justice. Free legal aid isn't charity. It's a fundamental right guaranteed by Article 39A of our Constitution. It ensures that every person, regardless of economic or social background, can stand equal before the law. And to make that right real, India has built an extensive three-tier legal services structure at the national, state and district levels.
बिल्कुल और तन्वी इसीलिए कहा जाता है कि अपने अधिकारों के बारे में जानना बेहद जरूरी है क्योंकि न्याय प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी व्यवस्था चलाने के लिए सोच समझकर वित्तीय पोषण की आवश्यकता होती है भारत में कानूनी सहायता तीन स्तरीय वित्तीय संरचना के माध्यम से समर्पित है और इसमें नंबर एक है राष्ट्रीय कानूनी सहायता कोष जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है नंबर दो है राज्य कानूनी सहायता कोष जिसका संचालन संबंधी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है और इसमें नंबर तीन है जिला कानूनी सहायता कोष जिसका प्रबंधन जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है
Yes, this structure ensures that help is available in every nook and corner of the country, from metropolitan cities to remote rural blocks. When someone needs help, they can apply to the right legal services authority or committee in person by filling a form or even orally with a volunteer recording the request or even online through the official portal. Once your application lands at the legal services institution, they decide that whether you need advice, counseling or a lawyer to represent you in the court.
बिल्कुल और यदि आपका मामला स्वीकार कर लिया जाता है तो आपको नियुक्त वकील के नाम का एक पत्र भी मिलेगा और फिर वकील से आप खुद संपर्क कर सकते हैं या फिर वकील जो है वो आपसे संपर्क करेगा नियमों के अनुसार आपके आवेदन पर निर्णय प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए आपके आवेदन का ट्रैक करना भी आसान है भौतिक रूप से दाखिल करने पर आपको डाक या ईमेल द्वारा अपडेट प्राप्त होंगे वहीं ऑनलाइन आवेदन के लिए एक आवेदन संख्या जनरेट की जाती है और आप ऑनलाइन स्थिति की जांच कर सकते हैं
That's over 44 lakh lives touched by justice, citizens guided, represented or defended without having to pay a single rupee. One of India's most inspiring justice initiatives is the Lok Adalat system, literally meaning People's Court. These are special forums created under the Legal Services Authorities Act to settle the disputes amicably or speedily without long court battles. There are two main types. The first one is National Lok Adalats, organized periodically across the country, and the second one is Permanent Lok Adalats, which operate continuously for certain types of cases.
बिल्कुल, और श्रोताओं, लोक अदालत नामक विशेष जन अदालतों के नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय, राज्य और स्थायी लोक अदालतों के स्तर पे करीब 23 करोड़ 58 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है. और ये आंकड़े केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि ये सशक्तिकरण की कहानियां भी हैं. ये भूमि विवादों को सुलझाने वाले किसानों, अन्याय के विरुद्ध कानूनी मदद पाने वाली महिलाओं, उचित वेतन का दावा करने वाले श्रमिकों और यह समझने वाले नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं कि कानून उनके साथ है और उनके विरुद्ध नहीं.
Prime Minister Narendra Modi inaugurated the National Conference on Strengthening Legal Aid Delivery Mechanisms at the Supreme Court of India in New Delhi yesterday. He also launched the Community Mediation Training Module prepared by the National Legal Services Authority.
सच्चा न्याय आपके लिए मिलने का इंतजार नहीं करता, वह आपको ढूंढता है. न्याय आपके बैंक बैलेंस की परवाह नहीं करता, वह आपके अधिकारों की परवाह करता है. आइए हम खुद को याद दिलाएं कि न्याय कुछ लोगों का विशेष अधिकार नहीं है, यह सबका अधिकार है. और याद रखें, कानून और अपने अधिकारों को जानने से हम मजबूत नागरिक बनते हैं और एक ज्यादा न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में मदद मिलती है.
National Legal Services Day isn't just about remembering when an act came into force. It's a celebration of a living promise that justice will never be a privilege of the few. From free legal aid and advice to Lok Adalats resolving crores of cases to simple online access, the system stands as proof that India's justice delivery mechanism isn't just about law but about people.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
Let's begin with Kerala. Sparsh, the system for pension administration introduced by the Defence Accounts Department, is transforming the way defence pensions are managed. The Sparsh outreach programs being organised in various places to reach them more closely. Let us listen how the Sparsh outreach program is bringing smiles and relief to the defence pensioners and their dependents in Kerala. More on this from our correspondent.
Dispatch outreach programs are designed to make pension disbursement faster and completely hassle-free. From simplifying documentation to ensuring timely payments, the initiative stands as a true tribute to the service and sacrifice of our veterans. The recently held Sparsh outreach program in Thiruvananthapuram proved to be a major success, making a real difference in the lives of defense pensioners and their dependents in Kerala. Officials from banks handling defense pensions and their representatives from 9 records offices across the country participated in the event. What made this initiative unique was its on-the-spot resolution system. Officials brought all relevant records and registers, enabling them to address complaints and settle issues right at the venue. Pensioners and their dependents were spared the inconvenience of visiting multiple offices, as many issues were resolved immediately, with pension payment orders being issued on the spot. The experiences of many beneficiaries clearly show how Sparsh is transforming lives and bringing real change to defense pensioners and their families. Take the case of Srimati Lily Paul, who had been facing delays in receiving her family pension due to a mismatch in her name. With proper guidance through Sparsh, her pension payment order was processed. Similarly, Srimati Eliyamma had been struggling with technical issues related to her pension payment order. Her problem was solved through Sparsh. These are a few examples of how Sparsh and its outreach programs are bringing smiles, relief and dignity to the lives of veterans and their dependents across Kerala. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
और अब बात करते हैं, भारत आज उस स्वर को नमन कर रहा है जिसने आजादी की लड़ाई को एक दिशा दी। महान लेखक और देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में अपने उपन्यास आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। यह गीत उस दौर में देशभक्ति की पुकार बन गया था जिसने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारत को एकता, साहस और आत्मगौरव का संदेश दिया।
भारत आज उस स्वर को नमन कर रहा है जिसने आजादी की लड़ाई को एक दिशा दी। महान लेखक और देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में अपने उपन्यास आनंद मठ में इस अमर गीत की रचना की थी। यह गीत उस दौर में देशभक्ति की पुकार बन गया था जिसने गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारत को एकता, साहस और आत्मगौरव का संदेश दिया। आज देश भर में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इस अवसर पर कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि एक मंत्र, एक ऊर्जा, एक संकल्प और मां भारती के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। राजधानी दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री ने वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारम्भ किया। इधर श्री विजयपुरम के राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल के सामने वीर सावरकर पार्क में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। छात्रों द्वारा सामूहिक गायन, नृत्य, नाट्य और वंदे मातरम पर आधारित प्रस्तुतियों ने जन जन में देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि वंदे मातरम भारत की आत्मा की आवाज है। यह गीत हमें एकता, समर्पण और मातृभूमि के प्रति प्रेम का संदेश देता है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी श्री विजयपुरम से संपादक अंकित कुलश्रेष्ठ के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद।
In Punjab, the Department of the Protector General of Immigrants of the Ministry of External Affairs launched an outreach awareness program on safe and legal mobility abroad for the youth of the state. Organized in collaboration with the Central Bureau of Communication of the Ministry of Information and Broadcasting in Jalandhar on Friday, the outreach initiative reflects the External Affairs Ministry's continued commitment to the vision of Surakshit Jai, Prashikshit Jai, promoting safe, legal and skilled mobility of Indian citizens seeking overseas employment. A report.
This is the first such initiative launched in Punjab and was aimed at enhancing public awareness on safe, legal and informed overseas employment opportunities and sensitizing aspiring youth about the dangers of irregular migration and fraudulent overseas employment offers. The Protector General of Emigrants, Surinder Bhagat, called upon the youth of Punjab and the country to follow legal ways to go abroad instead of going illegally. He said those interested to go to foreign shores for better prospects must check the credentials of the travel agents as well. A special informative pamphlet in Punjabi on legal mobility and hashtag Videsh Rozgar Sathi for digital awareness campaign on social media platforms was also launched on the occasion. Protector of Emigrants Chandigarh Yashudeep Singh said that more such awareness program will be started in other districts of the state soon. He asked the youngsters to follow the website www.emigrate.gov.in of the department to know all the details required to go abroad. He urged the youth to benefit from ongoing initiatives aimed at educating prospective youths and students about the procedures, safeguards and authorized channels for overseas employment. An exhibition on the theme showcasing awareness posters were also put up. For Parikrama, this is Rajesh Bali from Jalandhar.
The Greater Chennai Corporation has announced vaccination camps for pet dogs across the city on 3 Sundays starting 9th of this month. The government has made dog licenses mandatory and has started imposing penalties for non-compliance. A report from our correspondent.
The Chennai Corporation has said that the aim is to vaccinate the canine population within the city while reinforcing a culture of responsible pet ownership. The vaccination camps will be held at 6 pet clinics from morning 8 to evening 5. A resolution was passed mandating pet licenses and microchipping for all dogs earlier this month at the Chennai Corporation. From 24th of this month, door-to-door inspections will be carried out by health workers. Pet owners will have to pay a penalty of Rs. 5,000 if tail waggers are not vaccinated. vaccinated. In this mass vaccination drive targeting both stray and pet dogs, the civic body has vaccinated 1,13,000 stray dogs against rabies over the past 3 months. According to veterinary officer Dr. J. Kamal Hussain, nearly 260 pet dogs were licensed and microchipped between October 8 and November 10 by the Greater Chennai Corporation. Joy, Akashwani reporting for Parikrama from Chennai.
और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। भारत की 16 सदस्यीय तीरंदाजी टीम बांग्लादेश के ढाका में 9 से 14 नवंबर तक आयोजित होने वाली एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में शामिल होगी। ज्योति सुरेखा वेन्नम और अभिषेक वर्मा अपने तीसरे व्यक्तिगत खिताब जीतने का प्रयास करेंगे। अभिषेक वर्मा और प्रथमेश जावकर कंपाउंड पुरुष टीम का नेतृत्व करेंगे, वहीं दीपिका कुमारी महिला टीम की कमान संभालेंगी।
In tennis, Novak Djokovic withdrew from the 2025 ATP Finals just an hour after winning the ATP 250 Athens title, citing a shoulder injury. The withdrawal ends his season and marks the second consecutive year he'll miss the Tour Finals.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
On 9th of November 1947, Junagadh was annexed to the Indian Territory. Junagadh was a princely state in the Kathiawad region, where most of other princely states had already acceded to India. The ruler of Junagadh was Nawab Mahabat Khan Rasool Khanji.
In May 1947, Shahnawaz Bhutto from Karachi became the Diwan of Junagadh. Under his influence, the Nawab decided to accede to Pakistan on 15th of August. Though, the Nawab had earlier given the impression that the future of Junagadh lay in joining India.
To satisfy the popular demand of the people of Junagadh, the then Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, made an offer to Pakistan to accept and abide by the verdict of the people of Junagadh in respect of the accession of the state to either of the dominions. People of the Junagadh were becoming agitated with the Nawab, and the situation was becoming tense with each passing day.
After failing over a month to get a response from Pakistan to the offer, India put in place a series of measures that held the threat of military action against Junagadh. The Nawab of Junagadh fled to Karachi by air with his family and his pet dogs. On 8th of November, Bhutto asked the government of India to directly take over the administration of Junagadh through the regional commissioner at Rajkot.
India had indicated that it would want to formalize the arrangement through a plebiscite. This was held on February the 20th, 1948. Of around 2 lakh registered voters, only 91 cast their votes in favor of the accession to Pakistan. And thus, with the wish of the people, the princely state of Junagadh became a part of India.
Today is also the death anniversary of Pushpalata Das, a freedom fighter from Assam. At the age of just 6 years, she joined the Banar Sena to popularize the Khadi among the people and organized Chakra Sangh. Being inspired by her mother, she took pledge to free the motherland and never looked back ever since. At the age of 14, she was expelled from high school for protesting against the hanging of Bhagat Singh.
During 1940, her studies came to an end when she was jailed for individual satyagraha. From the year 1940 to 1942, Pushpalata Das was in Bombay as a member of the Women's Subcommittee of the National Planning Committee. During that period, she worked with Mridula Sarabhai and Vijayalakshmi Pandit for development and constructive works.
In the year 1942, Pushpalata Das married Omio Kumar Das, who was also a true Gandhian and a social worker.
After her marriage, Pushpalata organized the Shanti Bahini and Mrityu Bahini with her co-workers in Tezpur. Pushpalata was supposed to lead the procession to put the national tricolour flag on the compound of Gokhpur police station.
However, at that time fate intervened and Kanaklata Barua took charge over the procession from Pushpalata Das and fell to the British bullets. Post-independence, she served as a member of parliament. She also worked as an editor of a well-known Assamese magazine, Jayanti.
Pushpalata Das was offered the Tamrapatra by the Indian government for her services rendered during the freedom movement. But she refused to accept the Tamrapatra. The noble soul breathed her last on the 9th of November 2003 at the age of 88 years.
और श्रोताओं, इसी के साथ आज हम याद कर रहे हैं महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक धोंडो केशव कर्वे को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। धोंडो केशव कर्वे को पूरा देश महर्षि कर्वे के नाम से जानता था। महर्षि कर्वे ने अपना पूरा जीवन महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने खुद विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए स्वयं एक विधवा से विवाह कर समाज को नई सोच की ओर प्रेरित किया। बाद में उन्होंने भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया जो आगे चलकर SNDT महिला विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और सामाजिक सुधारों के लिए लगातार संघर्ष किया और इसके साथ ही आपको बता दें कि उनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
And today is the death anniversary of Har Gobind Khurana, an Indian-American biochemist. While on the faculty of the University of Wisconsin-Madison, he shared the 1968 Nobel Prize for Physiology or Medicine with Marshall W. Nirenberg or Robert W. Hawley. Mr. Khurana and Nirenberg were also awarded the Louisa Gross Horvitz Prize from Columbia University in the same year. Born in British India, Mr. Khurana served on the faculties of three universities in North America and he received the National Medal of Science in 1987.
और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध अभिनेता पंकज धीर को, जो आज ही के दिन 1956 में पंजाब में जन्मे थे और उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। उन्हें सबसे अधिक पहचान मिली टीवी धारावाहिक महाभारत में निभाए गए कर्ण के किरदार से। यह भूमिका इतनी लोकप्रिय हुई कि कर्ण का नाम आते ही पंकज धीर की छवि आज भी आंखों के सामने आ जाती है।
जब मेरे साथ कोई नहीं था ना वासुदेव, तब केवल दुर्योधन ने मेरी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया था और आज जब उसे मित्रों की आवश्यकता हुई तो मैं उसका हाथ छोड़कर उधर चला जाऊं? नहीं वासुदेव, नहीं। मैं अर्जुन के वाणों के घाव सहन कर सकता हूं, पर अपमान का ये घाव नहीं सहन कर सकता।
And today is the death anniversary of Niranjan Pal, an Indian playwright, screenwriter and director in the Indian film industry in the silent and early talkie days. He was a close associate of Himanshu Rai and Franz Austin, with whom he was a founding member of Bombay Talkies. His father was the noted freedom fighter Bipin Chandra Pal, and Niranjan himself, as a teenager, was briefly involved in the Indian freedom struggle during an association with Vinayak Damodar Savarkar and Madanlal Dhingra in London. And he wrote some of the India's earliest blockbusters like Achhut Kanya, Janmabhoomi, Jeevan Naiya and more. He also collaborated with noted dancer Uday Shankar to write a libretto for first Indian ballads performed by Anna Pavlova and Uday Shankar himself. Let's hear a song from Achhut Kanya.
और इसके साथ ही आज हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित चित्रेश दास को। वे भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के एक ऐसे उस्ताद थे जिन्होंने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियों से दुनिया भर में विशेष पहचान बनाई। पंडित चित्रेश दास ने बहुत कम उम्र में कथक सीखना शुरू किया और बाद में लखनऊ घराना की परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। उन्होंने अमरीका में भी कथक की शिक्षा दी और कई दशकों तक भारतीय नृत्य संस्कृति के प्रचार प्रसार में जुटे रहे और नृत्य जगत में उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले।
And today is the birthday of Sukhbir Singh, an Indian singer. He is often referred to as the Prince of Bhangra. Let's hear a music by him.
Dil dida, dil lela, aisa da kara kara.
His Bhangra music varied from fusion to pure Punjabi at times, and his second album was Gal Ban Gayi, went platinum in 1997. His Bhangra is a fusion of Bhangra with rap, techno and reggae. And he has used tablas, congos, guitars and keyboards, many more things in his music.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो ये इजाजत दीजिए करिश्मा राय और तन्वी को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने के लिए।
नमस्कार।